वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 42 यज्ञ के धनुष का टूटना। इसके पहले हमने सुना कि भगवान कृष्ण मथुरा नगरी का दर्शन कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों में जाते हैं तो धोबी मिला। धोबी ने गलत तरीके से बात की तो उसका सिर उड़ा दिया भगवान ने, उसके कपड़े छीन लिए। इसके बाद दर्जी मिला और दर्जी भगवान के कपड़े ठीक करता है। इसके बाद मालाकार माली मिला, उसने भगवान को माला पहनाई। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान माधव राज मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक युवा स्त्री को देखा। एक जवान स्त्री मिली और वो कैसी है, कुबड़ी है, उसको कहते हैं कुब्जा। कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख आकर्षक था और वो सुगंधित लेपों का थाल लिए हुए जा रही थी। अलग अलग रंग के लेप, चंदन के लेप, एक थाल में कई कटोरियां हैं, उनमें लेप रखा हुआ है, यानी घिस करके जो बनाया जाता है ना, उसको लेप कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लेप उस थाल में थे और भगवान जो है तो भगवान हंस करके उससे बोल रहे हैं। भगवान हंस करके उससे बोलते हैं, किससे, कुब्जा से। अथ व्रजन राजे पथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रसन्नस प्रदहं। तात्पर्य में लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये युवा कुबड़ी स्त्री वास्तव में भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंश रूपा थी। सत्यभामा तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं जो भू शक्ति कहलाती हैं और उनकी अंश रूपा पृथ्वी धरती की प्रतिनिधि है जो असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई थी। अच्छा, जो झुकी हुई है तो पृथ्वी देवी जो है का अवतार है ये कुब्जा। तो पृथ्वी झुकी है, उसके ऊपर बहुत भार है असुरों का। भगवान ने अभी असुरों का भार उतारना नहीं है, कंस का भी अभी भार है पृथ्वी के ऊपर। तो ये जो कुब्जा है जो झुकी हुई है ये पृथ्वी देवी का अंत है। भगवान कृष्ण इन दुष्ट शासकों को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे, अतः इन श्लोकों में वर्णित कुबड़ी त्रिवक्रा को सीधा करने की भगवान की लीला पृथ्वी के भार उतारने की सूचक है। इसका नाम त्रिवक्रा भी है, तीन स्थानों से झुकी है। साथ ही भगवान ने त्रिवक्रा को अपना माधुर्य संबंध प्रदान किया। रसप्रद भगवान को कहा जाता है रसप्रदा। इससे सूचित होता है कि भगवान ने इस तरुण कुबड़ी के साथ जो व्यवहार किया उससे उन्होंने अपने ग्वाल मित्रों का मनोरंजन किया। भगवान कैसे बोलते हैं, भगवान रसिक हैं, कैसे बोलते हैं, हे सुंदर जंघाओं वाली तुम कौन हो, ओह हाँ हे सुंदरी ये लेप किसके लिए है, हमें सच सच बता दो, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान फल प्राप्त होगा। का त्वम्बरोर्वे तदो हानुलेपनम कस्यांगने वाम कथयस्व साधुना దేహావయోరంగ విలేపముత్తమం శ్రేయస్తస్తేన చిరాన్ భవిష్యతి. తాత్పర్యం లిఖా హై కి భగవాన్ నే మజాక్ మే ఉస్ స్త్రీ కు క్యా కహా, బరోరు యాని సుందర జంఘా వాలి, ఉన్కా యే మజాక్ సచ్ముచ్ కైసా థా, మనోరంజన్ కర్నే వాలా థా, క్యోంకి భగవాన్ సుందర బనానే వాలే థే ఉస్కో, ఇస్లియే భగవాన్ ఉస్కో ఐసా కహా. అబ్ దాసీ నే ఉత్తర్ దియా, ఉస్నే క్యా ఉత్తర్ దియా, హే సుందర్ మే రాజా కంస కి దాసీ హూ, వే మేరే ద్వారా తయార్ కియే గయే లేపో కా అతీవ సమ్మాన్ కర్తే హై, మేరా నామ్ త్రివక్రా హై, జిన్ లేపో కో భోజరాజ్ ఇత్నా అధిక చాహతా హై, భలా ఆప్కే అతిరిక్త ఔర్ కౌన్ ఇస్కే యోగ్య హో సక్తా హై. వో కహ రహే కంస యోగ్య నహీ హై, ఇస్కే ఆప్ దోనో కే అలావా ఔర్ కౌన్ హై జిస్కో దియా జాయే. కంస బహుత్ పసంద్ కర్తా హై మేరా లేప్, లేకిన్ వాస్తవ మే మిల్నా చాహియే ఆప్కో, ఆప్కో మిల్నా చాహియే. ధోబీ నే ఉల్టీ బాత్ కహీ థీ, రాజా కే కపడే తుమ్ చాహతే హో, బడీ ఇచ్ఛా హో రహీ రాజా కే కపడే పహన్నే కీ, జంగల్ మే చరాతే హో పశువో కో, పహాడో మే రహతే హో, రాజా కే కపడే పహన్నే కీ ఇచ్ఛా హో రహీ హై, వో ఉల్టా బోల్ రహీ హై, యద్యపి రాజా చాహతా హై మేరా లేప్, లేకిన్ వాస్తవ మే మిల్నా చాహియే ఆప్కో. దాస్యస్మ్యహం సుందర కంస సమ్మతాం త్రివక్రనామాం హనులేప కర్మణి మద్భావితం భోజపతి రతి ప్రియం వినా యువాం కోణ్యతమస్మి తదర్హతి. తాత్పర్య మే లిఖా హై, శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి బతలాతే హై కి త్రివక్ర కా దూసరా నామ్ కుబ్జా థా, కుబ్జా తో కిసి భీ స్త్రీ కో కహ సక్తే జో కుబడీ హో, ఔర్ త్రివక్రా ఉస్మే భీ విశేష క్యోంకి తీన్ జగహ్ సే చడీ హై, ఔర్ ఉస్నే ఉస్ కృష్ణ కో క్యా బోలా, సుందర్ హే సుందర్ ఉస్నే, క్యోంకి ఉస్నే కృష్ణ సే కామ ఇచ్ఛా థీ, కింతు ఉస్నే అప్నే ఇస్ మాధుర్య భావ కో ఛిపానే కే లియే ద్వివచన్ కా ప్రయోగ్ కియా తుమ్ దోనో కే లియే, జిస్సే కి కృష్ణ కే ప్రతి జో ఉస్కా విశేష ఆకర్షణ హై వో ఛిప్ జాయే, ఇస్లియే కృష్ణ బలరామ్ దోనో కో కహా కి తుమ్ దోనో కో యే లేప్ మిల్నా చాహియే. తో తీన్ జగహ్ సే టేఢ్ీ థీ, కహాన్ సే గర్దన్ ఔర్ ఛాతీ ఔర్ కమర్, తీన్ స్థానో సే వో టేఢ్ీ థీ. ఔర్ అబ్ కృష్ణ కో ఉస్నే అప్నా లేప్ దే దియా, కృష్ణ కే శరీర మే అప్నా లేప్ లగా దియా, క్యో క్యోంకి వో ఆకర్షిత్ థీ కృష్ణ కే సౌందర్య సే, కృష్ణ కే ఆకర్షణ సే. కృష్ణ కే సౌందర్య సే ఆకర్షణ సే ఔర్ మిఠాస్ సే హసీ సే వాణీ సే చిత్వన్ సే ఆకర్షిత్ థీ. తో కృష్ణ కీ వాణీ సే కృష్ణ కీ చిత్వన్ సే వో ఆకర్షిత్ హో గయీ, తో కృష్ణ ఔర్ బలరామ్ కో ఉస్నే లేప్ దియా. రూప పేశల మాధుర్య హసితాలాప వీక్షిత ధర్షితాత్మా దదో సాంద్రం అభయోరనులేపనం. తాత్పర్యం లిఖా హై కి విష్ణు పురాణ మే భీ ఇస్ ఘటనా కా వర్ణన్ హై, కైసే కి ఆదర్ పూర్వక్ ఉస్నే కృష్ణ కో ఉత్తర్ దియా, కృపయా ఇసే లే లో ఔర్ ఫిర్ దోనో కో లేప్ ప్రదాన్ కియా, ఉపయుక్త లేప్, బలరామ్ కే శరీర మే కైసా రంగ్ హోనా చాహియే ఉస్ ప్రకార కా రంగ్, ఔర్ కృష్ణ కే శరీర మే కైసా రంగ్ హోనా చాహియే వైసా లేప్ ఉస్నే దియా. విష్ణు పురాణ కా శ్లోక హై, శ్రుత్వా తమాహసా కృష్ణం గ్రహ్యతాం ఇతి సాదరం అనులేపనం ప్రదదాం గాత్రయోగం అథో భయో. అబ్ కృష్ణ ఔర్ బలరామ్ నే అప్నే శరీర మే లేప్ కియా, జిస్సే ఉన్కే శరీర అప్నే రంగో సే విపరీత రంగో సే సజ్ గయే, దోనో భగవాన్ అత్యధిక సుందర లగ్నే లగే. విపరీత రంగ కా లేప్, కృష్ణ కా రంగ హై సాంవలా, తో ఉన్కో బలరామ్ కే రంగ కా లేప్ లగా, ఔర్ బలరామ్ జీ కా రంగ హై గోరా, తో కృష్ణ కే రంగ కా జో లేప్ హై వో లగా, ఇస్ ప్రకార సే బహుత్ సుందర కృష్ణ బలరామ్ హో గయే. తతస్తావంగ రాగేణ సువర్ణేతర శోభినం సంతాప్తే పరే భాగేన सुशुभाते नूरंजितम्। अब इस सेवा से कृष्ण त्रिवक्रा के ऊपर प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी स्त्री को अपने दर्शन का फल दिखलाने के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम रिजीम कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। अब भगवान क्या करते हैं, अपने पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांवों से पैर के अंगूठों को अपने दोनों पांवों से दबाते हुए भगवान अच्युत ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपने दोनों हाथों की ऊपर उठी हुई एक उंगली रखी, उसके शरीर को सीधा कर दिया। पैरों से पैर को दबाया और ठुड्डी को ऐसे किया, तीन स्थानों से टेढ़ी थी और सीधा कर दिया। पद्भ्याम माक्रम्य प्रवदे द्विंगुलिप्ता ने पाणी प्रगृह चिबुके ध्यात्म उदने नमन अच्युतहां। अब क्या हुआ, भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा जैसा एक अतीव सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सीधे और समान थे और नितम और स्तन बड़े बड़े थे। सात नरजो समानांगी बृहच्रोणे पयोधर मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभो प्रमदोत्तम। अब सौंदर्य आचरण और उदारता से युक्त त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति कामेच्छा का अनुभव होने लगा। वह उनके दुपट्टे के छोर को पकड़कर हंसने लगी और उनसे इस प्रकार बोली, ततो रूपे गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयन्ते जाते हृदय। आप जानते हैं कि ये कौन है पिछले जन्म की, ये जो त्रिवक्रा है पिछले जन्म की कौन है? हाँ, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है ये सूर्पणखा है, सूर्पणखा। तो राम के समान तो वो नहीं थी सुंदरता में कि वो उनसे जो है याचना करती, लेकिन उसने याचना की और उसकी ना करी, क्योंकि वो इतनी योग्य नहीं थी कि वो राम के साथ जो है संबंध बनाए। तो उसकी इच्छा तो पूरी हुई नहीं और फिर रावण के पास वो गई, तो फिर रावण ने तो सीता हरण का विचार किया, तो उसने सोचा कि ये रावण भी मेरा काम तो करेगा नहीं, उसको तो चाहिए थे राम। तो रावण की कोई रुचि नहीं थी कि सूर्पण खाकर राम से संबंध कराए, वो तो अपने चक्कर में था, सीता के चक्कर में, इसलिए वो फिर जो है ना इस चक्कर को छोड़ करके कहाँ गई, पुष्कर में गई और 10,000 साल तक तपस्या की। और शिव जी को जो है उसने प्रसन्न किया और शिव जी के वरदान से वो फिर जो है यहाँ त्रिवक्रा बनी, मथुरा में कंस की दासी बनी। तो ये जो है ना सूर्पणखा, और तो भी जो है ना उसके अभी पूरे पाप दूर नहीं हुए थे, इसलिए तीन स्थानों से टेढ़ी थी, हालांकि सुंदर हो गई, लेकिन भगवान ने उसको सीधा कर दिया। अब जो है ना वो भगवान के वस्त्र को पकड़ करके और अब बोली इस प्रकार से, अब क्या कहा, हे वीर आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। हे नरश्रेष्ठ मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। ये ही वीर गृहम जामो न ताम त्यक तुम हो सहे तो योन मथित चित्तायाम प्रसीद पुरुषर सभ। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बातचीत प्रस्तुत करते हैं कि क्या क्या बातें हुई। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज की आयु ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने कृष्ण की पूरी लीला सुनानी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें और भी जो विस्तृत बातें हैं वो बता रहे हैं। तो कृष्ण पूछते हैं, वो उनका वस्त्र पकड़ के कहती कि चलो मेरे घर। तो कृष्ण पूछती है, क्या तुम मुझे अपने घर भोजन करने के लिए बुला रही हो? तो वो कहती है, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब क्यों बुला रही हूँ वो नहीं बता रही, क्यों बुला रही, इन यहाँ छोड़ नहीं सकती आपको। तो कृष्ण कहते हैं किंतु यहाँ राज मार्ग पर चलने वाले लोग तुम्हारे कहने का दूसरा अर्थ लगाकर हंसेंगे, अतः तुम ऐसा मत कहो। तो त्रिवक्रा कहती है मैं क्या करूं, मेरा मन मथा जा रहा है, आपने मेरा स्पर्श करने की भूल की, ये मेरा दोष नहीं है, ये आपका दोष है, आपने स्पर्श किया मेरा। तो वो इतना नहीं समझी कि भगवान ने क्या किया उसको, उसको तो यही लगा कि भगवान कुछ कर रहे हैं तो ठीक है इनको जो है ना पूरा अवसर दूं मैं तो घर ले जाऊं। लेकिन वो जो है सुंदर हो गई, सीधी हो गई, उसे पता नहीं चला इस बात का। स्त्री द्वारा इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम जी के मुख की ओर देखा। बड़े भाई हैं पास में, जिस घटना को देख रहे थे तब ग्वाल मित्रों के मुखों पर दृष्टि डाली, तब हंसते हुए कृष्ण ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। एवं स्त्रियां याच्यमानां कृष्णो रामस्य पश्यतां मुखं वीक्षानु गोपानां प्रसन्नतामवाचः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, अपना कार्य पूरा करते ही मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा जहां लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। तो हमारे जैसे जो पथिक हैं तो उनको चिंता दूर, उनकी चिंता तुम्हारे यहाँ ही दूर हो सकती है। निस्संदेह तुम हमारे जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो, जिनका कोई घर बार नहीं होता है। येष्यामिते गृहं शुभ्रं पुंसां माधिविकर्षणं साधितार्थो गृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम्। तात्पर्य में लिखा है अग्रहाणाम शब्द से श्री कृष्ण का इशारा क्या है कि उनका कोई स्थायी निवास नहीं है। अग्रहाणाम स्थिर निवास तो है नहीं, है ना, और ब्रज में भी कहाँ कहाँ घूमते रहे अग्रहाणाम। जब जन्म लिया मथुरा में तो वहां भी नहीं रहने को मिला, वहां से गोकुल में आए, फिर गोकुल में भी रहने को नहीं मिला, फिर छठीगढ़ा में आए, छठीगढ़ा में रहने को नहीं मिला, फिर नंदग्राम में आए, अब यहाँ मथुरा में आए, अब यहाँ पर भी कुछ पता नहीं कहाँ रहेंगे। लेकिन अग्रहाणाम का एक अर्थ ये भी है कि जो विवाहित ना हो, अभी किसी में विवाहित नहीं है तो भी कह रहे हैं कि जो विवाहित नहीं है उनके लिए तुम्हारे ही घर में शांति मिलेगी। कृष्ण कहते हैं आगे इस प्रकार मीठी बातें करके, इस प्रकार मीठी बातें करके उसे छोड़कर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। रास्ते भर व्यापारियों ने उनकी और उनके बड़े भाई की पूजा की। कैसे व्यापारी लोग पूजा करते हैं, कैसे पान मालाएं सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की भेंटें दे दे करके पूजा करते हैं कृष्ण की। विसृज्य माध्या वाण्या काम ब्रजन मार्गे वणिक पथ है नानो पाय में तांबूल श्रगंध है सांग्रजोर्चिता। अब कृष्ण वहां से जब आगे बढ़े, कहां से हाट बाजार, जब त्रिवक्रा से मिले तो वहां के हाट बाजार में आए, व्यापारियों से मिले। अब व्यापारियों से मिलकर के आए तो अब नगर में आए, जहां गलियां हैं उधर आए। तो वहां पर नगर की स्त्रियों ने जब देखा कृष्ण को तो उनके हृदय में कामदेव जागा, इस प्रकार क्षुब्ध होकर वे अपने आप को भूल गए। उनके वस्त्र, उनके जूड़े, उनके कंगन ढीले पड़ गए और वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रही, चित्र लिखी हुई जैसे हों, देख रही हैं कृष्ण को, चित्र लिखी या बिल्कुल जैसे पत्थर की मूर्तियां हों ऐसे कृष्ण को देख रही हैं। अंदर सनस्मर क्षोभा आत्मानं नाविदन स्त्रियां विस्रस्तवास कवर वलया लेख मूर्तियां। तात्पर्य में लिखा है शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि चूंकि कृष्ण को देखते ही मथुरा की स्त्रियों में माधुरी आकर्षण के लक्षण प्रकट हो गए, इसलिए वे नगर की सर्वोच्च भक्तिने हैं। कामदेव के 10 लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं, क्या क्या है, आंखों के माध्यम से आकर्षण, फिर मन में गहन आसक्ति, इसके बाद संकल्प, फिर निद्रा दूर हो जाती, निद्रा समाप्त हो जाती है, फिर दुर्बल होना, फिर बाहरी वस्तु में अरुचि, फिर निर्लज्जता, फिर उन्माद, फिर मूर्छा और मृत्यु, ये 10 दशाएं हैं। तो कृष्ण के प्रति जो है आकर्षण हुआ तो ऐसा हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी इंगित करते हैं कि जिन भक्तों में शुद्ध भगवत प्रेम होता है उनमें सामान्यतया मृत्यु लक्षण प्रकट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के संबंध में ये अशुभ है, किंतु उनमें अन्य नौ लक्षण प्रकट होते हैं। आनंदमय मूर्छा होती है, मृत्यु भी होती है उनकी, लेकिन कृष्ण का जो रूप अमृत के समान है ना, तो उनको जिंदा कर देता है, इसलिए वो ना जिंदा है ना मरी है, ये हाल होता है। क्योंकि वो उस आकर्षण में, तीव्र आकर्षण में मृत्यु भी हो जाती है और जो कृष्ण का जो स्मरण और जो दर्शन है वो मरने नहीं देता है, तो वो अमृत और जहर दोनों एक साथ काम करते हैं, जहर मारता है, अमृत उनको जिला देता है, इस प्रकार से वो मरती हैं और जीती हैं, कृष्ण के प्रेम में मरती रहती है हमेशा और जीती रहती है, जिस तरह से वो ना मरती है ना जीती है, दोनों बातें होती हैं। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वो स्थान पूछा जहां धनुष यज्ञ होना था। अब कल धनुष यज्ञ होना है, वो स्थान पूछ रहे हैं कि वो स्थान कौन सा है। वे जब वहां गए तो उन्होंने अद्भुत धनुष देखा जो इंद्र के धनुष जैसा था। तथा पौराण पृच्छमानो धनुष स्थानम अच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमेवाद्भुतम्। वो धनुष अत्यंत ऐश्वर्यशाली धनुष जो था, लोगों की विशाल टोली द्वारा रक्षा किया जा रहा था, बड़े बड़े सैनिक रक्षा कर रहे थे और उसकी बहुत पूजा हो रही थी, तो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए और रक्षक लोग मना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाकर के धनुष को उठा लिया, बिना किसी भय के धनुष को उठा लिया। क्यों? गुंडे हैं मथुरा में तो गुंडे आए हैं, इसलिए करते हैं अपनी मर्जी से, उन्हें किसी का डर थोड़ी है। जहाँ कोई राजा का भय दिखाए तो और उल्टा काम करेंगे, कि राजा का आदेश है, राजा का शासन है, तो और उल्टा काम करते हैं। पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् अर्चितम् परमर्धिमम् पारिमाणो निभि कृष्णम् प्रसय्य धनुराददेम्। बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान अनुक्रम ने राजा के रक्षकों को देखते देखते एक क्षण से भी कम समय में डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उन्होंने बलपूर्वक डोरी खींची और उस धनुष को बीच से तोड़ दिया, जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ता है। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभंज मध्यतोम यथेक्ष दंडम मद करियुरुक्रम। अब आप जानते हैं ये धनुष कंस को किसने दिया था? ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था, जब कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर के वो महेंद्र पर्वत को हिलाने लगा तो परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि वो महेंद्र पर्वत पर थे, वो बोले कि मैं तेरा वध कर देता हूँ। तो फिर कंस परशुराम जी से क्षमा याचना की और बोला कि नहीं नहीं मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तो असुर हूँ, आप क्षत्रियों का विनाश करने वाले हो, आप तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले हो, आप तो मेरे ऊपर कृपा करो। तो फिर परशुराम जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उसको धनुष दिया और ये धनुष भगवान विष्णु का था, भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया था और शंकर जी से परशुराम जी को प्राप्त हुआ, परशुराम जी ने कंस को दिया और बोले कि इस धनुष को जो व्यक्ति तोड़ेगा उसी के हाथों तुम्हारी मौत होगी, इस धनुष को तुम ले जाओ। अब भगवान जो है उस धनुष को ही जा करके क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी और आकाश की सारी दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस भयभीत हो उठा, मौत दिखाई दी उसको धनुष के टूटने से। धनुषो भज्यमानस्य समदाखं रोदसी दिशः पूरयामास यम श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमन। अब यहाँ रक्षक लोग बड़े गुस्सा हुए कि मना करते रहे माने नहीं और धनुष को भी तोड़ दिया। अब वो क्या कहते हैं, अब हम तुमको तोड़ेंगे। रक्षक लोग आए हथियार उठाए भगवान को मारने के लिए, और कृष्ण और उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से घेर लिया और क्या कहते हैं, पकड़ो मारो चिल्ला रहे हैं। संरक्षण सानुचरम कुपिता आततायिन गृहेतु कामं आवमृण गृहताम बद्धताम इति। अब जब कृष्ण बलराम ने देखा कि ये गलत इरादे से आ रहे हैं हमारे पास में, ये तो गलत है, जो अच्छे इरादे से आए भगवान ही देख रहे हैं किसका अच्छा इरादा है और किसका गलत इरादा है। कृष्ण बलराम जो कुछ भी कार्य करें वो सब ठीक है, किसी का अगर अच्छा इरादा है तो बहुत अच्छे हैं और किसी का गलत इरादा है तो बहुत गलत है, बस एक ही चीज है। कृष्ण बलराम जो कुछ भी करें वो सब ठीक है, उस पर कोई विचार ही नहीं करना है कि ये गलत कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति गलत इरादा करता है, उनको गलत कहता है, गलत सोचता है, तो वो गलत है और उसके लिए फिर भगवान गलत आचरण करते हैं। और जो व्यक्ति उनको अच्छा कहता है, अच्छा समझता है, अच्छी इरादे कहता है, तो उसके साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि गलत इरादे से आ रहे हैं तो क्या किया, उनके हाथ में कुछ तो था नहीं, क्या तो क्या किया उन्होंने, धनुष के दो टुकड़े थे, एक टुकड़ा कृष्ण ने लिया और एक टुकड़ा बलराम जी ने लिया, बस उनके हाथ में आ गया हथियार, इससे बढ़कर के और कुछ हो नहीं सकता है। वो धनुष भी तो बहुत भारी था, बहुत वज़नी था, कोई हथियार उसके मुकाबले में नहीं है। कृष्ण के हाथ में दो टुकड़े आ गए धनुष के, तो उन्होंने उसी से ही खत्म कर दिया, एक एक करके पीट करके खत्म कर दिया। अथतां दुराभिप्रायान् विलोक्य बलकेशव रुद्धो धनवन् आदायं सकले तांत जगन्नतुः। अब कंस की तरफ भेजी गई सेना की उस टुकड़ी को मार करके कृष्ण और बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे, मतलब जैसे कुछ ही हुआ ही नहीं है। इतनी बड़ी सेना को मार करके और बड़े आराम से घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और जो जैसे बात करता है उससे वैसे बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी प्रकार का। बलम चा कंस प्रहितम हत्वा साला मुखा ततः निष्क्रम चेरतुर हृष्टाम निरीक्षय पुर संपदाम। अब कंस सामने नहीं आ रहा है, कंस डरा हुआ है बहुत ज्यादा और कृष्ण बलराम के सामने नहीं आ रहा है, बल्कि अब और ज्यादा डर गया, उसको और ज्यादा भय पैदा हो गया। किस आवाज से? धनुष के टूटने की आवाज से। तो ऐसा लगता है कि उसने एक और सेना भेजी कि उनको इनका वध कर दो, है ना, तो उनको भी मार करके और कृष्ण बलराम जो है उस यज्ञशाला से निकल करके बाहर आ गए और फिर अपना घूम रहे हैं, नगर की शोभा को देख रहे हैं। कृष्ण और बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य, उनके बल साहस और सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि अवश्य ही ये दो देवता, ये मनुष्य नहीं हो सकते, अद्भुत तो इनका कार्य है, अद्भुत बल है, अद्भुत साहस है। साहस जहां पर बहुत डर हो वहां पर भी कोई डर नहीं मानते, अपनी मस्ती से जो ना हर काम करते हैं। साहस भी बड़ा अद्भुत है और बल भी बहुत अद्भुत है, हर चीज अद्भुत है कृष्ण बलराम में। तयो तदनभुतम वीर्यम निशाम्य पुरवासिनः तेजः प्रागल्भ्यम रूपम चाम मेनिरे बोधोत्तम। अब इच्छानुसार विचरण कर रहे थे, आप जानते हैं कि किस समय से उन्होंने शुरू किया था विचरण करना, हमने पिछले अध्याय में सुना था अपराह्न काल 3:22 से शुरू होता है, 3:22 से 5:46 तक चलता है अपराह्न काल। तो इस समय जो है वो घूम रहे हैं और अब क्या हुआ, सूर्यास्त होने लगा, अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले स्थान में लौट आए जहां पर सकट सब इकट्ठे खड़े हैं। तो सूर्यास्त होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो कृष्ण बलराम कहाँ गए? वापस नंद महाराज के स्थान में, जहाँ सब बड़े बड़े ग्वाले इकट्ठे हुए थे। तयोर विचरतो स्वयरम आदित्यो समुपे इवान कृष्ण रामो मृतो गोपेम पुरा छकटम यतुहु। वृंदावन से मुकुंद की विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी। अब वृंदावन से जब कृष्ण निकल रहे थे, तो जब कृष्ण वृंदावन से निकले थे तो गोपियों ने भविष्यवाणी की थी। किसी को याद है क्या भविष्यवाणी की थी गोपियों ने? मथुरा में क्योंकि स्त्रियां तो स्त्रियों के बारे में सोचती हैं कि मथुरा की स्त्रियां जो है ना, मथुरा की स्त्रियों का सौभाग्य खुल गया, हमारे सौभाग्य के द्वार बंद हो गए और मथुरा की स्त्रियों के सौभाग्य के द्वार खुल गए। तो भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे, और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य उतरी, क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एक तक देख रहे थे। निस्संदेह लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया, यद्यपि वे उनकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी चंचला कहलाती हैं। लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हैं उनका भी त्याग करती हैं लक्ष्मी जी, चंचला कहलाती हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती हैं। अभी कोई धनी हो गया, फिर कुछ सालों के बाद उसके जो संतान हैं वो निर्धन हो जाते हैं, किसी दूसरे को धनी बनाती लक्ष्मी जी। फिर भी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन तो भी लक्ष्मी जी ठहरती नहीं है के सामने, चंचला है। लेकिन वही लक्ष्मी जी कृष्ण को इतना चाहती हैं, अन्य अनेक लोगों का कि वो आव मथुरा में पूरी हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्ण ने ब्रज को छोड़ा है और मथुरा के वासियों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोप जो मुकुंद दिग में विरहा तुराया आशा सतास सरिता मधुपुर ये भुवन संपश्यताम पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी हित्वे तरान भजतन चकमे अनम श्री। अब कृष्ण बलराम क्या करते हैं? आकर के हाथ पैर धोते, हाथ पैर धोए और क्या किया? खीर खाई, क्योंकि ब्रजवासियों के पास तो गोरस होता है। तो कृष्ण बलराम ने क्या किया? खीर खाई, हाथ पैर धोए और खीर खाई। स्नान नहीं करते बार 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 खाते हैं, स्नान नहीं करते बार बार। तत्पश्चात ये जानते हुए कि कंस क्या करना चाहता है, दोनों भाइयों ने वहां सुखपूर्वक रात बिताई। अभी मथुरा के अंदर नहीं आए, मथुरा के बाहर ठहरे हुए हैं, अगले दिन मथुरा में जाएंगे। मथुरा में गए थे, घूमने के लिए गए थे, देखने के देखभाल करने के लिए गए थे, ये मथुरा के अंदर ठहरे नहीं है। अवनिकतांग्री युगल भुक्त्वा चिरोपसेचनम् कोसतुस्ताम् सुखम् रात्रिम् ज्ञात्वा कंसे चतीर्षतम्। अब दूसरी ओर कंस सुनता है, कंस अपने घर में छिपा हुआ सब समाचार जान रहा है, सुन रहा है कि क्या क्या हो रहा है। वो सुना कि किस तरह खेल की भांति कृष्ण बलराम ने धनुष तोड़ दिया, वो सुनता है, उसके रक्षकों और सैनिकों को मार डाला, तो बहुत भयभीत हो गया। अब काफी समय तक वो जागता रहा और जागते हुए उसने मौत के लक्षण देखे, मरना है उसको, तो मौत के लक्षण देखे। सोते समय भी, रात में कभी जागता था कभी सोता था, तो सोते समय भी उसको लक्षण दिखाई दिए मौत के, और जागते समय भी दिखाई दिए। दीर्घ है प्रजा गरो भी तो दुर्निमित्तानि दुर्मति बहु निचष्टो भय था मृत्यु और दौत्य कराणी च। अब कंस ने क्या अब शकुन देखे, कंस अपनी परछाई देखता है तो उसमें क्या दिखाई नहीं पड़ता, परछाई में सिर नहीं दिखाई पड़ता है, अपनी परछाई जब देखता है तो उसमें सिर नहीं है, ये मौत का लक्षण है। और आकाश की तरफ जब देखता है तो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, दो दो तारे दिखाई पड़ते हैं, ये भी मौत का लक्षण है। और छाया में एक तो सिर नहीं दिखाई पड़ता है, दूसरा छाया में छेद दिखाई पड़ता है। छाया में छेद होने नहीं चाहिए, छाया में कभी छेद नहीं हो सकता, छाया में छेद दिखाई पड़ता है। और उसे अपनी प्राणवायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। प्राणवायु की ध्वनि मतलब कान जैसे बंद करते हैं ना तो आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, है ना, भौं भौं की आवाज, वो आवाज बंद हो गई, ये मौत का लक्षण है। अपने कान बंद करके देखो, आवाज सुनाई पड़ती है, इसका मतलब आप सुरक्षित हो। तो कंस ने अपने कान बंद करके देखा तो आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, प्राणों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। और पेड़ दिखाई पड़ते हैं, कैसे, सोने सुनहले रंग के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, कभी सुनहले पेड़ नहीं होते हैं, सुनहले पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब मौत। और फिर जब चलता है रास्ते में तो पैर के चिन्ह नहीं बन रहे हैं, पैर के चिन्ह नहीं बन रहे हैं, मौत का लक्षण। और स्वप्न में क्या देखा, ये तो जागते, तो जागने के लक्षण है, और जब सोया तो सपने में क्या दिखाई दिया, दिखाई दिया कि भूत प्रेत सब मिलकर के उसका आलिंगन कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के आलिंगन कर रहे हैं कि हमारे परिवार में आप तुम शामिल होने वाले हो। भूत प्रेत आलिंगन कर रहे हैं उसका, और वो गधे पर सवार है, गधे पर चढ़ा हुआ है, और फिर विष पी रहा है, सपने में देखा। यही नहीं, अलहल, अलहल के फूलों की माला पहने हुए है वो, अलहल वो दाल होती ना, अलहल, अलहल की दाल होती है, तो उसके फूल, उसके फूलों की माला पहने हैं, और तेल पोते हैं अपने पूरे शरीर में, तेल लगाया हुआ है, और नग्न होकर के उधर से जा रहा है। इस प्रकार से कई अपशकुन देखे जो मौत के लक्षण थे। तो सोते हुए और जागते हुए कंस मौत के लक्षण देख रहा है, तो वो चिंता, चिंता के कारण सो नहीं पाया, थोड़ा भी सोता है तो सपने में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अदर्शनम ससिरसहम प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये चाम द्वैरोप्यम ज्योतिषाम तथा छिद्र प्रतीति छायायाम प्राण गोसानुपश्रुति स्वर्ण प्रतीतिर वृक्षेषु सुपदानाम मदर्शनम स्वप्ने प्रेत परिसंगहम खरयानम विसादनम यायान्नलद माल्येकम तैलाभ्यक्तो दिगंबरः अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्न जागरितानि च पश्यन्मरणे संत्रस्तो निद्रां लेभेन चिन्तयाम। अब इस प्रकार से रात बीती कंस की, इस प्रकार से कंस की रात बीती। वो कैसी रात थी, प्रलय की रात, प्रलय की रात हजार युगों की होती है, प्रलय काल की रात थी वो, कंस की, एक एक क्षण युग के समान लग रहा है, युगाई तम ने में थे कृष्ण के बिरह में गोपियों को एक क्षण युग के बराबर लग रहा है, ऐसी रात जो है ना कंस की, ऐसी हजार युगों की रात वो बीती। और सूर्य अब जल से ऊपर निकले, पानी से ऊपर सूर्य का उदय हुआ, और कंस ने विशाल उत्सव का आयोजन किया। अब धनुष यज्ञ तो हो नहीं सकता, क्यों, धनुष टूट गया, अब धनुष यज्ञ तो हो नहीं सकता, और धनुष यज्ञ के लिए बुलाया था कृष्ण बलराम को, ये बड़े बदमाश हैं, उस धनुष को ही तोड़ दिया आकर के। अब कुश्ती का आयोजन कराया, और सीखे हैं पहले से पहलवान लोग, क्या कि कृष्ण बलराम से कुश्ती लड़ेंगे, क्या क्या करके, राजा का आदेश है ना, और इस प्रकार से उनको मार डालेंगे। अब कंस गए, बैठे ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं राजा साहब, दुष्टायाम निशी कौरव्यम सूरे चाद्या समुत्थिते पारयामास वैकंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सव। अब राजा के लोगों ने उस दंगल की विधिवत पूजा की और अपने ढोल और वाद्य यंत्र बजाए और जहां दर्शक लोग बैठते हैं वहां पर मालाएं झंडियां और फीते और बंदनवारों से सजाया। तब मथुरा की पूरी जनता वहां पर बैठी है दंगल देखने के लिए। आनर्चो पुरुषारंगम तोरे भेरियस्य जगनी रे मंचा सालंकृता तरंगीं पताका चैले तोरणें। अब वहां पर सुखपूर्वक कौन आए? नगरवासी। ब्राह्मणों का अलग स्थान बनाया, ब्राह्मण लोग अलग स्थान पर बैठते हैं और क्षत्रियों का अलग स्थान और नगरवासी और जिले के निवासी और पड़ोसी जो हैं लोग हैं मथुरा के जो पड़ोसी आए हैं उनका अलग स्थान और फिर राजा के अतिथि जो सामंत लोग आए हैं वो आए हुए उनका अलग स्थान। सब विधिवत जो ना स्थान विभाजित था। येसु पोहराम जान पदम ब्रह्म छत्र पुरोगम यथोपजो संविशुम राजानश्च कृतासनम। तो सब तो बड़े प्रसन्न है, एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, बहुत भयभीत है। और वो कौन है? कंस। सबसे ऊंचे मंच पर बैठा है वही पर सबसे ज्यादा भयभीत वही है, कंस है। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच में बैठा हुआ उसका हृदय कांप रहा था, रात भर सोया भी नहीं था। अब यहां बैठा हुआ है और दिल धड़क रहा है बहुत तेजी से, दिल धड़क रहा है। कंसा परिवृतो मात्यम राजमंच उपावेशन मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदय न विदूयताम। अब कुश्ती के पहले क्या होता है? जो है ना ताल पर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जोर जोर से, जैसे गर्वीले पहलवान अखाड़े में प्रवेश हुए, बड़ा उत्साह हुआ पहलवानों को कुश्ती लड़ने के लिए। तो पहलवान आए मंच पर आए और वहां बैठ गए। वाद्यमाने सो सूर्य सुन मल्लतालो तरे सुच मल्ला सलंकृता दृप्ताम सोपाध्याय समासत। अब संगीत आनंददायक संगीत से उत्साहित होकर चाणूर मुष्टिक कूट सल तोसल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए ना। अखाड़े की चटाई वो जहां पर मिट्टी होती ना, मिट्टी होती है और उसको वो मतलब क्या करते हैं, मिट्टी को बिछाते हैं, वहां पर बैठ गए। चाणूरो मुष्टिका कूटाम सलस्तो सल एव तासे दूरुपस्थानम वल्गुवाद्य प्रहर्षिताम। तो ये जो पांच भाई हैं ये कौन है? चाणूर मुष्टिक कूट सल तोसल, ये जो है कंस के पहलवान हैं। ये जो पांच पहलवान हैं ये पिछले जन्म में जानते क्या थे? पिछले जन्म में थे उतस्थ्य मुनि के पुत्र। पांच पुत्र थे ये, ब्राह्मण थे। तो ये जो है वैसे तो ब्राह्मण हैं और फिर देवताओं के पक्ष के हैं, लेकिन क्या करते थे? महाराज बलि के जो है ना उसमें जाते थे, महल में जाते थे और वहां कुश्ती सीखते थे। ब्राह्मण के पुत्र होकर के और कुश्ती में ज्यादा रुचि थी इनकी, और बलि महाराज जो असुरों के राजा हैं उनके यहाँ जाकर के पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। तो उतस्थ्य मुनि ने बहुत गुस्सा किया कि तुम मेरे घर में पैदा होकर के ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के ब्राह्मण का कार्य क्या है? समो दमस्तमा सोचम शाम ज्ञानम विज्ञानम आश्रित्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म तो यही है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कुश्ती लड़ना सीख रहे हो, ये तो क्षत्रियों का कर्म है। इसलिए तुम जो है मनुष्य लोक में जन्म लोगे क्षत्रियों के परिवार में। तो फिर जो है किसी राजा के पुत्र के रूप में ये पांचों का जन्म हुआ, और जब कंस दिग्विजय के लिए निकला था तो समय इन पांचों से जो ना उसने कुश्ती लड़ी कंस ने, और कंस का बड़ा अच्छा जो ना सिद्धांत था, कोई भी उससे लड़ाई करता था ना तो कंस उसे दोस्ती करता था पहले। जो भी व्यक्ति पहलवान हो या बहुत बलवान हो तो कंस पहले दोस्ती करता था और कहता था कि देखो लड़ाई में अगर मैं हारूं तो तुम्हारा जीवन भर दास बन जाऊंगा, और अगर तुम हारो तो तुम जीवन भर मेरे दास बन जाओ। तो इस प्रकार से दोस्ती के साथ वो जो है ना लड़ाई करता था कंस। इस प्रकार से उसने बहुत असुरों को अपना दास बना लिया था, और दोस्ती के कारण असुर लोग जो है ना फिर उसके दास बन जाते थे। तो सबको उसने हराया था, तो इन पांचों पहलवानों को भी कंस ने हराया था और फिर अपना दास बना लिया। तो फिर मथुरा में ले आया। तो ये जो है पहले माहिष्मतीपुरी के राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुए, तो पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय बन गए और फिर कंस के मित्र बन गए। कंस की योजना के अनुसार कंस के विरुद्ध जो भी आचरण करे उसका इसी प्रकार से वध करते थे। कंस क्या करते थे, कंस महाराज कुश्ती का महा उत्सव मनाते थे और कंस के आदेश से उस व्यक्ति को लड़ना पड़ता था। चाणू और मुष्टिक ये लोग लड़ाई करते थे और उसको मार देते थे कंस के सामने, और कोई शिकायत नहीं होती थी क्योंकि कंस का ही सब कानून था, तो कोई और कानून चलता नहीं था, कोई कोर्ट केस नहीं चलता था। इस प्रकार से कंस के ये लोग मित्र बने हुए थे। तो ये जो है बड़े प्रसन्न होकर के यहाँ आ गए। चाणू रो मुष्टिक कूटाम सलस्तो चले ए विचाम तासे दूर उपस्थानम बलगोवाद्य प्रहर्षितां। अब उस समय क्या हुआ, कंस ने बुलाया किसको, नंद महाराज और सब गोपों को जो कि मथुरा के बाहर ठहरे हुए थे। जब तक कंस ना बुलाए तब तक मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। कृष्ण बलराम तो प्रवेश कर गए तो बिना अधिकार के बिना आदेश के घुस आए थे मथुरा में और बदमाशी करके चले गए। अब जो है ना कंस महाराज, नंद महाराज जो है आए हैं, कंस ने जब बुलाया है तो आए हैं और कंस को भेंटें दी नंद महाराज ने, जो वार्षिक कर देते थे वो दिया, और फिर वहाँ दर्शकों के स्थान में जाकर के नंद महाराज भी बैठ गए अपने सब ग्वालों के साथ में। क्या देखने के लिए, कुश्ती देखने के लिए। नंद गोपां दयो गोपां भोज राजय समा होता निवेदितो पायनास्तम एकस्मिन मंचे आविशन। तात्पर्य में लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार समाहूता शब्द सूचित करता है कि कंस ने व्रत के प्रधान व्यक्तियों को आदर समेत आगे बुलाया, जिससे केंद्रीय सरकार को अपनी भेंटें अर्पित कर सके। केंद्रीय सरकार क्या है, कंस है ना, और बाकी बहुत से जनपद थे। आचार्य चक्रवर्ती के अनुसार कंस ने नंद को यह कहकर आश्वस्त किया, हे ब्रजराज आप मेरे ग्राम शासकों में सर्वोपरि हैं। नंद महाराज ग्राम शासक थे, नंद ग्राम के शासक थे नंद महाराज। तो कंस कहता है कि आप सबसे ऊपर हैं, जितने भी ग्राम शासक हैं कंस के अधीन उनमें नंद जी सबसे ऊपर हैं। आप अपने गोप ग्राम से मथुरा तो आए हैं किंतु आप मुझसे भेंट करने नहीं आए, क्या इसलिए कि आप डरे हैं? आप ये ना सोचें कि आपके दोनों पुत्रों ने धनुष तोड़ दिया है इसलिए वे बुरे हैं। मैंने उन्हें इसलिए यहाँ आमंत्रित किया था क्योंकि मैंने सुना था कि वे अति बलवान हैं। मैंने ये मल्ल प्रतियोगिता उनकी शक्ति की परीक्षा के लिए ही आयोजित की है। कितना अच्छा है कंस, कंस कह रहा है नंद से कि आप डरो नहीं कि मैं गुस्सा हूँ कि उन्होंने धनुष तोड़ दिया, मैंने उनको बुलाया इसलिए, धनुष से की कोई बात नहीं है, उनके बल की परीक्षा के लिए हमने बुलाया है कि हमने सुना है कि गांव में ये जो दो बच्चे हैं ये काफी अभ्यास करते हैं कुश्ती लड़ने का, क्योंकि बल की परीक्षा के लिए मैंने बुलाया, तो उसको तो मरवाना था, लेकिन बहाना क्या है, बल की परीक्षा के लिए मैंने बुलाया है तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो अतः आप बिना किसी संकोच के आगे आओ और डरो नहीं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आगे बतलाते हैं कि नंद महाराज ने देखा कि उनके दोनों पुत्र वहां उपस्थित नहीं है, दोनों लड़के उपस्थित नहीं है, तो दोनों लड़के बड़े चंचल हैं, कहां चले जाते हैं, कहां भाग जाते हैं, कुछ पता नहीं है। स्पष्ट था कि राजा कंस के आदेश की अवहेलना करके उन्होंने प्रातः काल के समय को अवकाश के रूप में ले लिया था और कहीं चले गए थे। जिस समय कंस ने बुलाया उस समय कहीं इधर उधर घूम फिर रहे हैं, कंस के आदेश से नहीं काम करते कोई भी। कृष्ण बलराम जो है, नंद महाराज तो कंस के आदेश से ही हर काम कर रहे हैं, राजा जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे, लेकिन कृष्ण बलराम जो ना गुंडे हैं, बदमाश हैं। जब कंस बुलाएगा उस समय नहीं आएंगे, आएंगे अपनी इच्छा से आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। तो अब नंद जी ने देखा कि कृष्ण बलराम तो है नहीं, अतः कंस ने कुछ ग्वालों को उनकी खोज करने के लिए भेज दिया था कि जरा खोजो कहाँ हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों मूर्ख कहाँ हैं। और ढंग से व्यवहार करने के लिए और अखाड़े में वापस आने की सलाह देने के लिए नियुक्त कर दिया था कि ठीक से व्यवहार करें और यहाँ आए अखाड़े में, बदमाशी ना करें। कृष्ण बलराम श्रील विश्वनाथ आचार्य ये भी कहते हैं कि उन दीर्घाओं में, यानी वो उन मंचों में नंद और ग्वालों के बैठने का दूसरा कारण ये भी था कि राजमंच पर बैठने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिल सका था, इसलिए पब्लिक के बीच में ही बैठे थे नंद महाराज। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के अंतर्गत यज्ञ के धनुष का टूटना शीर्षक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय में 38 श्लोक हैं। यह अध्याय आज पूरा हुआ है। अब किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, इनका प्रश्न है कि भक्त रसामृत सिंधु में बताया गया है कि कंस भयभीत है कृष्ण से, तो कृष्ण से जुड़ने का एक ये भी माध्यम है जिसकी जो कुछ चर्चा होनी चाहिए। हाँ, भयानक रस, ये भी रस है। कृष्ण के साथ में जितने भी हैं सब ना रस होते हैं, तो बीभत्स रस, भयानक रस है ना। हाँ, इस प्रकार की जो ना रस, तो कंस जो है ना भयानक रस में स्थित है भगवान कृष्ण से, भयभीत हो रहा है और कृष्ण का चिंतन कर रहा है। अब जो है ना उसका भौतिक चिंतन सब समाप्त हो गया, संसार के भोगों का चिंतन सब समाप्त हो गया। कृष्ण को देख रहा है किस रूप में, मौत के रूप में, कि मेरी मौत है जो आ गई। और वो चिंतन कर रहा था कब से, जब से आकाशवाणी हुई तब से चिंतन कर रहा था। और फिर उसको फिर ये भी याद आ गया, नारद जी ने बताया या जैसे भी याद आया कि पिछले जन्म में वो काल ने भी था, तो वो सब घटनाएं याद आई कि भगवान विष्णु से कैसे शत्रुता हुई थी और फिर भगवान के द्वारा मारा गया था। इस जन्म में फिर जो है ना वही विष्णु अब मुझे मारने के लिए जन्म ले रहा है। तो कृष्ण के जन्म के पहले से ही वो कृष्ण का चिंतन कर रहा है, मेरा तो दिन रात चिंतन कर रहा है कृष्ण का। इस प्रकार से कंस जो है चिंतन करता है और फिर कृष्ण के हाथों मारा गया और कहाँ जाता है, वैकुंठ में जाता है। कंस आदि जो 9 भाई थे, उग्रसेन के पुत्र थे, ये सब वैकुंठ में गए। जब बाद में आगे चल करके उग्रसेन महाराज की इच्छा होती है कि मैं अपने पुत्रों को देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ गए हैं, कैसे हैं, आपके हाथ तो मारे गए तो उनको तो अच्छी गति मिली होगी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, ये जो यज्ञ आप कर रहे हो इसके अंत में आपको मैं आपके पुत्रों का दर्शन करा दूंगा। वो अश्वमेध यज्ञ था उग्रसेन महाराज जो कर रहे थे। तो यज्ञ के अंत में कंस आदि 9 भाई वैकुंठ से आए। हाँ, और सबके 4 भुजाएं थीं, विष्णु के समान शरीर था, पीतांबर धारण किए थे, है ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। और उग्रसेन जो है ना कह रहे हैं पुत्र, तो फिर वो जो है ज्ञान देने लगे कि पिता अब जो है ना ये सब संबंध आप जो है ना भूल जाओ, अब तो केवल एकमात्र संबंध जोड़ो ये परम ब्रह्म जो श्री कृष्ण है जो आपके सभा में रहते हैं, है ना। और इनकी कृपा से जो है अब हमको जो है ना वो स्थान प्राप्त हुआ है वैकुंठ में, है जहाँ सब प्रकार का सुख है, सब प्रकार की सुविधा है। अब जो है हमारा इस जो है ना इस पृथ्वी से कोई संबंध नहीं रहा, और जो पहले के परिवार थे उनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहा। इस तरह से कंस ने फिर उग्रसेन को जो है ज्ञान दिया। इनका प्रश्न है कि जो हमने चर्चा की है कि पिछले जन्म में कुब्जा जो त्रिवक्रा तो सूर्पणखा थी, उसी प्रकार से माली और दर्जी कौन थे पिछले जन्म में। दर्जी का तो बताया गया है, और वो पिछले बार हमने चर्चा की थी वो दर्जी कौन था पिछले जन्म में। ये जो मथुरा का दर्जी है पहले मिथिला का दर्जी था, है ना। और जो है वधू की ओर से जो दूल्हे को पोशाक दी जाती है ना, तो सीता महारानी की तरफ से उसने राम लक्ष्मण के कपड़े सिले थे जब राम का विवाह हुआ था, है ना। तो वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को जो है नए वस्त्र प्राप्त होते हैं, तो राम लक्ष्मण के वस्त्र उसने सिले थे। जब राम लक्ष्मण के वस्त्र सिले थे तो उसने अंदाजे से ही नापा था वस्त्रों को और सिले थे, तो उसकी इच्छा जो है ना मतलब बहुत थी कि राम लक्ष्मण की नाप लेता, हाथ पैर कमर सीना और इस हिसाब से फिर कपड़े बनाता और फिर पहनाता अपने हाथ से और फिर देखता कि हाँ फिट हो रहे हैं कि नहीं। तो वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई उस राम अवतार में, तो इच्छा इस कृष्ण अवतार में पूरी हुई। तो अब कंस के कपड़े पहने ढीले डाले थे, तो फिर उसने अपने हाथ से कपड़े उतारे, फिर कृष्ण के हाथ पैर सीना गला सब नापा, है और फिर कपड़ों को काटा छाटा सिलाई किया फिर पहनाया और फिटिंग किया, तो उसकी वो इच्छा पूरी हुई दर्जी की, है ना। और जो सुदामा माली है उसका नहीं बताया गया कि कौन था पिछले जन्म में। धोबी का भी बताया गया है, जो कंस का धोबी था वो पिछले जन्म में कहाँ था, अयोध्या में। अयोध्या में धोबी था, और ये धोबी वही है जिसे अपनी पत्नी को डांटा था कि मैं तुझको अपने घर में नहीं रखूंगा, मैं राम नहीं हूँ, स्त्री लोभी राम नहीं हूँ, है ना, जिसने सीता को रख लिया। इस प्रकार से राम पर आक्षेप किया। इस अपराध के कारण क्या बना, अयोध्या का धोबी था, अभी किसका धोबी बना, कंस का धोबी बना, है ना। और इसके भी पहले पद्म पुराण में लिखा है कि वो तोता था, है ना, वाल्मीकि मुनि के आश्रम का तोता था, अपनी मैना के साथ में राम कथा सुनता था सुनाता था, है ना। और ये उड़ करके वाल्मीकि मुनि के आश्रम से ये तोता मैना आ गए मिथिला के उपवन में, सीता महारानी के उपवन में आ गए और सीता राम की चर्चा कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो सीता जी ने देखा कि अरे ये तो हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो किसी उपाय से इनको पकड़वा लिया और पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो उन्होंने बताया। जब उनको पता चला कि ये तो वही सीता जी हैं जिनकी कथा वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हमेशा चलती रहती है, तो बड़े चकित हुए। और सीता जी कहती हैं कि तुम लोग मेरे पास रहो, जब तक राम मुझे लेने ना आए तब तक मुझे राम कथा सुनाते रहो। तो सीता जी ने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन ये दोनों बोले कि नहीं नहीं हम लोग तो पक्षी उड़ने वाले हैं, हम लोग बंधन में नहीं रह सकते हैं। तो सीता जी ने कहा कि देखो मैना तो हमारे साथ रहेगी, अगर तुम्हारी इच्छा तो जाओ, तोता से कहा तुम जाओ, मैना को मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे राम कथा बहुत प्रिय है, ये मुझे राम कथा सुनाएगी और सब प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन में इसको खिलाऊंगी। लेकिन वो जो मैना थी वो इस भय से कि बंधन में रहना पड़ेगा उसने तो अपने प्राण त्याग दिए राम का चिंतन करते हुए, और जो तोता था वो स्त्री के वियोग में बड़ा दुखी होकर के सीता जी को उसने बहुत कठोर शब्द कहे, उसने जो है कहा कि दुष्टे तेरे कारण मेरा स्त्री से वियोग हुआ, अब मैं कारण बनूंगा तेरा पति से वियोग का। तो फिर जो है ना सीता जी को श्राप देने के कारण वो फिर नीच धोबी बना अयोध्या में, और फिर उसके कहने से ही राम ने फिर सीता का त्याग किया, है ना। अब राम की फिर निंदा की उसने, पहले सीता की निंदा की तो दुर्गति हुई, अब और राम की निंदा की तो और दुर्गति हुई, तब क्या बना, मथुरा का धोबी बना, है ना।
है ना। लेकिन अब जो है ना अपराध से मुक्त कर दिया भगवान कृष्ण ने, क्या करके उसका सिर उड़ा दिया। जिस मुंह से जो ना हाँ उल्टा सीधा बोलता ही बोलता रहता है, उसी मुंह को भगवान ने उड़ा दिया, अलग कर दिया। इस प्रकार से वो जो है अपराध से मुक्त हुआ। इनका प्रश्न है कि कुब्जा पिछले जन्म सूर्पणखा थी तो राम से विवाह करना चाहती थी, जब राम ने कहा कि मैं पहले से विवाहित हूँ तुम लक्ष्मण के पास जाओ, तो लक्ष्मण के पास गई कि ठीक है कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो सबसे पहली प्रेफरेंस प्राथमिकता तो राम को थी, लेकिन फिर अगर कहा कि नहीं नहीं लक्ष्मण के पास चले जाओ, ठीक है चलेगा कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर मतलब चुनाव है तो राम का ही, राम के साथ रहना चाहती है। तो यहाँ पर भी राम लक्ष्मण वही जो ना कृष्ण बलराम के रूप में प्राप्त हुए। यहाँ पर कृष्ण जो ना उसको ठुकराया नहीं, जब ठुकराया नहीं तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है ना। इनका प्रश्न, राम अवतार में जो ऋषि मुनि थे तो वे अगले जन्म में गोपी बने, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। भगवान राम जब दंडक अरण्य में आए, दंडक वन में आए, तो वहां तपस्या कर रहे थे ऋषि मुनि लोग। तो जब उन्होंने देखा भगवान राम को, तो गर्ग संहिता में लिखा है कि वो वास्तव में गोपाल जी से माधुरी संबंध रखते थे पहले से, उनकी इच्छा थी माधुरी संबंध में, भगवान गोपाल जी का वो ध्यान करते थे और अपने हृदय में वो गोपाल जी का ही ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके ध्यान में वो गोपाल जी क्या हो गए, जटा जूटधारी राम हो गए। तो बड़े चकित होकर के उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि जटा जूटधारी परम सुंदर राम उनके सामने खड़े हैं। तो फिर वो समझ गए कि हमारे गोपाल जी जो इष्ट देव हैं वो अभी राम के रूप में आए हैं। तो फिर उन्होंने जो है ना जब भगवान राम से इस प्रकार से प्रार्थना की कि हमें माधुर्य भाव में आपसे संबंध स्थापित करना है, तो भगवान राम फिर बोलते हैं कि इस जीवन में संभव नहीं है, लेकिन तुम अगले जीवन में ब्रज में गोपियां बनोगे। तो जो ये जो ऋषि रूपा गोपियां हैं दंडकारण्य के ऋषि हैं, ये जो है नंद महाराज के घर में गोबर उठाने वाली स्त्रियों का काम कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि थे दंडकारण्य के, ये नंद महाराज के भवन में गोबर उठाने वाली स्त्रियां थी, है ना। फिर भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उन्होंने भी जमुना जी की उपासना की, जमुना जी की पूजा की, और जमुना जी के वरदान से फिर इनको कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। इनका कहना है कि जैसे कंस था तो वो अपना मित्र बना लेता था जो उससे हारते थे, और इसी प्रकार के जो है ना रावण में भी था। रावण में वैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ जब हार जाता था तो फिर वो जरूर मित्र बनाता था, जिससे हार जाता था तो मित्र बनाता था। हनुमान जी से भी जब हार गया तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि बहुत बलवान हो तुम, बहुत बलवान हो। ये हनुमान जी वैसे नहीं है कि वो उसने हनुमान जी की प्रशंसा की तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। जब हनुमान जी की प्रशंसा की उसने रावण ने कि तुमने तो बड़ा करारा झापड़ मारा, मुझे तो बहुत तकलीफ हो गई और काफी देर तक चक्कर आता रहा, बहुत बलवान हो तुम, बहुत बलवान हो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे क्या बलवान हूं, धिक्कार है मेरे बल को, तू मरा नहीं। तो हनुमान जी जो है ना भगवान राम के भक्त हैं, तो वो नहीं मतलब इस तरह से किसी से मित्रता करते जो राम के खिलाफ हो। हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की, तो सोच रहा था कि हनुमान जी उसके मित्र बन जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं, अपनी निंदा करते हैं, अरे मेरे बल को धिक्कार है कि तुम मरा नहीं, तुझको तो मर जाना चाहिए था, मेरे बल को धिक्कार है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शीला प्रभुपाद।